ज्ञान का
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा।
ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी हम सभी के बीच में मंच पर उपस्थित है, सभी करतल ध्वनि से उषा दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी आपका इस सभा में बहुत बहुत तहदिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। आज आपका विषय है ज्ञान और योग, गीता का सच्चा ज्ञान वर्तमान समय शिव पिता परमात्मा ने सुनाया था और वो यही समय है। और ये ज्ञान सुनने के बाद उस प्रभु पिता परमात्मा से आत्मा का कम्युनिकेट कैसे करे, यानी परमात्मा से संबंध कैसे जोड़े, इस विषय पर ज्ञान और योग के पर प्रकाश डालेंगी राजयोगिनी उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत रहस्य पिछले चार दिनों से हम सुनते आए, और सचमुच जब गीता के महावाक्य की गहराई समझ में आने लगती है तो दिल गदगद होता है, क्योंकि जिस गीता का अध्ययन करना चाहा, जिसको समझना चाहा, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद भी जब उसको नहीं समझ पाए तो कुछ अधूरापन था। लेकिन ये ज्ञान को जब इस तरह से हम अध्याय वाइज सुनते आए तब उसकी एक कनेक्टिविटी समझ में आने लगी कि अर्जुन के विशाद योग और उसके बाद भगवान ने आत्मज्ञान दिया, स्वधर्म का परिचय कराया, स्वधर्म के आधार पर कर्म करने की आवश्यकता और स्थित प्रज्ञता किसको कहा जाता है उसको स्पष्ट किया। उसके बाद पारिवारिक जीवन में यज्ञ की प्रक्रिया ही सही कर्म है, अर्थात ये जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो मनुष्य कर्म करता है वही यथार्थ कर्म है। और जब अपने जीवन के अंदर दैवी संस्कारों की वृद्धि करता है तब जाकर के अपने जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा वृष्टि को अनुभव करते हुए अपने जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध कर देता, मन की प्रसन्नता का खुराक जीवन के अंदर अनुभव कर सकता है। उसके बाद जैसे अर्जुन ने सवाल पूछा कि मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, तो कहा रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, राग द्वेष के पूरक और मन बुद्धि इंद्रियां जिसके वासस्थान है। इसलिए अर्जुन पहले तुम मन बुद्धि और इंद्रियों को संयम में ले आओ, और प्रश्न पूछने पर कि क्या इसको संयम में ला सकते हैं तो भगवान ने बहुत सुंदर एक रियलाइजेशन दिया कि आत्मबल को समझते हुए बुद्धि के द्वारा मन को वश किया जा सकता है, और जिस दिशा में मन को खड़ा किया है, जिस कारण इंद्रियां मन को भटका देती है अनेक कामनाओं में, तो दिशा को परिवर्तन करने की जरूरत है। चौथे अध्याय में भगवान ने अपनी वास्तविकता के विषय में बताया कि ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग सबसे पहले किसको बताया था? सूर्यवंशी आत्माओं को, जहां से चंद्रवंशी आत्माओं ने जाना और फिर द्वापर युग तक भी आया, लेकिन कलयुग आते आते वो लुप्त हो गया। और फिर भगवान के जो मुख्य सवाल थे, भगवान को जो अर्जुन ने सवाल किए कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने के लिए आप सबकी तरह पैदा होते हो, तो कहा नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, पुनर्जन्म रहित, विनाश रहित हूं। मैं किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आता हूं, लेकिन मैं योग माया से अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। कब करते हैं? तो कहा जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। और क्यों आते हैं? तो इस संसार में विवेक, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान को, दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, ताकि एक सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर सको। और फिर कहा कि मुझे इन चरम चक्षु से देख नहीं सकते हो, मुझे देखने के लिए आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है। और आत्म साक्षात्कार कौन कर सकता है? जो पवित्र बनते हैं ज्ञान और तपस्या के माध्यम से, वही आत्म साक्षात्कार करने वाला इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस में अवतरित होते हैं। उसके बाद कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति बहुत सुंदर तरीके से बताई। व्यवहारिक जीवन के अंदर के बुद्धिमान योगी वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है और अपने पूर्व विकर्म को ज्ञानाग्नि से भस्म कर देता है। ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यही कहा कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, जिससे महान पाप आत्माएं भी इस संसार सागर को पार कर सकती है। और फिर भगवान ने सन्यास योग बताया। सन्यास कोई चीज, वस्तु, कर्तव्य, कर्मों का सन्यास की बात नहीं है, लेकिन सन्यास अंदर की बुरी वृत्तियों का सन्यास करने की बात है। कर्तव्य कर्मों का सन्यास करना, उसको सन्यास नहीं कहा जाता है। यथार्थ सन्यास कि जब व्यक्ति कर्म में बुरी वृत्तियों का त्याग करता है, और वही पुरुष इस नौ द्वार वाले देह में रहते हुए न्यारे और प्यारा रह सकता है। बहुत सुंदर, यहां तक हमने कल देखा था, आज आगे देखेंगे ध्यान योग। क्योंकि अब भगवान हमें ध्यान की ओर ले जाते हैं, तो इंद्रियों को संयम में लाने की बात तो कही, मन को एकाग्र तभी कर सकेंगे, लेकिन वो ध्यान की सही प्रक्रिया क्या है? लेकिन इसके पूर्व कुछ और गहराई की बात भगवान समझाते हैं अपने विषय में। और यही कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। आज तक हमारी मान्यता ये रही कि संसार में जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। पत्ता पत्ता अगर हिलता है तो वो भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। ये हाथ अगर उठता है तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं उठता है। लेकिन गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मनुष्य में कर्तापन मैं नहीं रचता हूं। मैंने अगर हाथ उठाने का जो कार्य करता है वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। कितना कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। और इसीलिए शायद हमें गीता पढ़ने पर भी समझ में नहीं आई, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे अंदर इतनी सारी बातें हैं जिसका लॉजिक कभी हमने सोचा ही नहीं। और इसलिए गीता के ये महावाक्य के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि आज दिन तक हमें यही कहा गया भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये हाथ भी नहीं उठता है, तो ये महावाक्य कैसे समझ में आएंगे। थोड़ा सा हम लॉजिक को अगर यूज करें कि मान लो कि ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारी तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई थी? नहीं, ऐसी तो भगवान की मर्जी नहीं होंगी। परमात्मा ने हर मनुष्य आत्मा में बुद्धि दी है, सबसे पावरफुल चीज बुद्धि, जिसके पास विवेक है, जिस बुद्धि में विवेक भरा हुआ है, जो सही गलत को बहुत अच्छे से पहचान सकता है। और इसीलिए ये विवेक भरने के बाद भगवान ने इंसान को स्वतंत्रता दी है कि अब तुम अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तुम्हें सही गलत की पहचान मैंने दे दिया है, बुद्धि दे दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बुद्धि है। फिर भगवान क्यों कर्तापन को रचेगा? इसलिए न कर्तापन रचता है, न कर्मों को रचता है और न कर्म फल के संयोग को रचता है। तीनों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आज एक छोटे बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे के आगे आप झूठ बोल करके देखो, जैसे ही आप झूठ बोलते हैं वो छोटा सा बच्चा भी आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना, मुझे पता है, कहता है कि नहीं कहता है। उसके पास भी ये विवेक शक्ति है कि सही क्या है गलत क्या है वो समझता है, कि तुरंत आपको कहेगा आपने झूठ बोला ना, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त बड़े क्या कहते हैं, बड़े क्या कहते हैं, चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोलता रहता है। ये कहते हैं ना, आप मान लो किसी के साथ फोन पर झूठ बोल रहे हैं और वो बच्चे ने आपको कह दिया मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप तुरंत उसको कहेंगे बीच में बोलने की आदत पड़ गई है, चुप बैठ, बड़ा समझता है। अब वो बच्चे को जैसे ही हमने चुप बैठ कहा कहा, समझता कुछ है नहीं, और कहता है मैं सब समझता हूं। अब वो बच्चे के अंदर एक युद्ध चलती है, एक संघर्ष चलता है। और संघर्ष क्या चलता है कि मेरी बुद्धि कहती है ये झूठ बोल रहा है, और ये कहता है कि मैं समझता नहीं हूं। मैं क्यों नहीं समझता हूं, मैं समझ रहा हूं ना। अंदर में संघर्ष चलता है। उसके बाद जैसी जिसकी प्रकृति, बहुत सुंदर भगवान ने यहां कहा, स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते हैं। कैसी प्रकृति? जिसके अंदर सात्विक प्रकृति है, वो इस बात की समझ पर अड़िग रहता है कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन जिसकी तामसिक प्रकृति होगी, जिस वातावरण में वो पलता है, वो वातावरण अगर सात्विक है, तब तो बच्चे के बुद्धि अच्छी विकसित होती है। लेकिन अगर घर का वातावरण तामसिक है, तो बच्चे के ऊपर भी उस तामसिक प्रकृति का प्रभाव पड़ जाता है और उसके दबाव में आकर के वो बरतने लगता है। तो दूसरी बार जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो उसको लगता है मैं भी झूठ बोल करके देखो, यही समझदारी है, और इसीलिए वो झूठ बोलता है। अब जब झूठ बोलता है तो बड़े क्या कहते हैं, झूठ बोलता है, कहां से सीखा? बड़ी गलत बात सीख के आता है, पता नहीं कहां से सीख के आता है। अरे भाई आपसे ही सीखा। अब जब ये कहा तो उसके अंदर और कशमकश चलती है कि जिस समय मैंने सच बोला तो मुझे कहा गया तुम समझता नहीं है। अब जबकि मैं उनको फॉलो करके झूठ बोल रहा हूं, तो भी थप्पड़ पड़ रही है कि झूठ बोलता है, कहां से सीखा। अब जैसी उसकी प्रकृति है, उस विधि को वो अपना लेता है। तामसिक प्रकृति है तो फिर वो हर बात में झूठ बोलना शुरू करता है, और अगर सात्विक प्रकृति है तो वो पुनः अपने विवेक को यूज करते हुए सच का प्रयोग करता है। बहुत सुंदर इस बात को भगवान आगे कहते हैं कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है। ये फ्रीडम हमें मिली है कर्म करने की, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसी पर है, और वही अपने कर्म के फल, किए के फल को भोगती है। परमात्मा किसी के भी पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। बहुत स्पष्ट गीता में ये महावाक्य है कि भगवान हमारे पुण्य कर्म पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, अगर कोई पाप करता है तो ये भी उसकी मर्जी है, भगवान कहते हैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ता है, अज्ञानता कौन सी? अहंकार, सबसे बड़ा अज्ञान। तो जब ज्ञान पर ये अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है, तो वह मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है, तो सभी बातें इस तरह स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान दूर होता है और हर बात यथार्थ रूप में समझ में आने लगती है। इंसान का जब जन्म होता है तो परमात्मा से उसको दो गिफ्ट मिलती है। जब इस संसार में आते हैं तो परमात्मा से हमें दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी दो गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट मिलती है विवेकयुक्त बुद्धि, जो सही गलत को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और दूसरी गिफ्ट मिलती है स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मुझे क्या करना है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलता है। ये दो गिफ्ट ईश्वर द्वारा जन्मते ही हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए मनुष्य अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर उसको ही हर बात में इंटरफियर करना है, भाई अब हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे करो, सारा अगर परमात्मा को ही डिसाइड करना है तो मनुष्य क्या कहेगा? फिर बुद्धि क्यों दिया? बुद्धि देते ही नहीं थे। कठपुतली की तरह ही अगर हमको चलाना था तो बुद्धि क्यों दिया? कहते थे कि नहीं? आज भी घर में एक बच्चा जब होता है, छोटा होता है, तो माँ बाप जैसे कहते हैं वैसे करता है। लेकिन 16 साल का हो जाए उसके बाद माँ बाप उसके ऊपर ऑर्डर नहीं चला सकते। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपने 16 साल के बच्चे को एडवाइस भी करना है तो यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड टू हिम, उसके साथ दोस्त बनना पड़ता है। अगर आप फिर भी पिता बन करके उसको यहां जाना है, यहां नहीं जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो बच्चा क्या कहेगा? अरे इतनी बुद्धि हमारे पास भी है, कहता है कि नहीं कहता है? आपको हर बात में हमें एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, कहेगा? माना वो भी जानता है और इसीलिए वो रिएक्ट करना शुरू करता है। अगर छोटी छोटी बातों में फिर भी माँ बाप एडवाइस करते रहे, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये करना है, यहां जाना है, यहां नहीं जाना है, तो वो भी कहेगा इतनी बुद्धि हमारे पास है, आप हर बात में हमें एडवाइस नहीं करो, अब हम छोटे नहीं रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर परमात्मा को ही हमें हर बात में भाई हाथ कब उठाना है, हाथ कब नीचे करना है, ये भी अगर उसको डिसाइड करना होता था तो यही कहते फिर हमें इस संसार में भेजने का मतलब क्या हुआ? सोचने की बात है, आज करोड़ों मनुष्य है, हर एक व्यक्ति कब हाथ उठाएगा और कब नीचे रखेगा ये भगवान डिसाइड करेगा? पत्ता पत्ता हिलाता है तो भगवान हिलाता है ये कहते हैं। अब दुनिया में अवजो वृक्ष और पत्ते हैं, क्या बैठकर पत्ता ही हिलाता रहेगा और कोई काम धंधा नहीं उसके पास? हर एक के पास अपने अपने लेवल का कार्य है। जिस तरह से कंपनी में जाओ, कहने में यह आता है कि ये कंपनी का मालिक, कर्ता धर्ता सब कुछ ये व्यक्ति है, इसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है कंपनी के अंदर, कहने में ये कहावत है। लेकिन अगर कंपनी में कहीं खिल्ला मारना है तो वो हथौड़ा और खिल्ला लेके जाएगा नहीं खिल्ला मारने के लिए, उसके लिए वर्कर है, उन वर्करों के ऊपर सुपरवाइजर है, उन सुपरवाइजरों के ऊपर मैनेजर है, उन मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर है, उनके ऊपर डायरेक्टर्स है और फाइनल वो मालिक है। और हर एक का अपना अपना कार्य है। वर्करों का कार्य अपना है, मैनेजरों का कार्य अपना है, डायरेक्टरों का कार्य अपना है, मालिक का कार्य अपना है। इसी तरह यह संसार का खेल जो है तीन सत्ताओं के बीच में है, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति, ये तीन के बीच में संसार का खेल चलता है। और ये तीनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता है। परमात्मा अपने लेवल पर कार्य करता है, प्रकृति अपने लेवल पर कार्य करती है और पुरुष आत्माएं अपने लेवल पर कार्य करती है, और उसके लिए उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। पत्ते हिलाने का काम ये प्रकृति का है, ये प्रकृति पति का नहीं है। इसलिए कहा परमात्मा अपने लेवल पर काम करता है। ये तीनों के तीन कर्तव्य है। कौन से? सृजन, पालना और विनाश। लेकिन ये तीनों अपने लेवल पर करती है। मनुष्य अपने लेवल पर सृजन का कार्य करता है, अपने लेवल पर उसकी परवरिश पालना का कार्य करता है, और वही मनुष्य भी जब क्रोधायमान हो जाता है, क्रोध विकार के वश हो जाता है, तो अपनी ही स्थापन पालन की हुई चीज का विनाश भी कर सकता है। प्रकृति अपने लेवल पर सृजन, पालना और विनाश का कार्य करती है। आज जंगल में एक वृक्ष से बीज गिरा, प्रकृति ही उसको सहारा देती है, धरनी के अंदर उस समा जाता है, बारिश का पानी मिलता है, सूर्य की धूप मिलती है और वो बीज प्रस्फुटित होता है, पौधा निकलता है, वो पौधा बढ़ने लगता है। प्रकृति ही उसका सृजन करती है, प्रकृति ही उसकी पालना भी करती है, और वही प्रकृति जब तूफान पर चढ़ती है तो अपनी ही स्थापन पालन की हुई चीज का महाविनाश भी कर सकती है। वो अपने लेवल पर करेगी। और परमात्मा भी ये तीन कार्य करते हैं, सृजन, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं, करण करावनहार है, कराते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश। करण करावनहार परमात्मा है। इसीलिए हमने हर बात के लिए उत्तरदायी उसको ही बना दिया। नहीं, उसका लेवल सृष्टि के लेवल पर है कि जब घोर अधर्म का युग हो जाता है तब उसका महाविनाश। लेकिन उस महाविनाश के पहले सृजन के बीज बो देता है और उसकी पालना करने लगता है, फिर पुराने का विनाश कर देता है। ये परिवर्तन या महापरिवर्तन जो संसार के लेवल पर है वो किस तरह से होता है, ये उसके ही विशेष कृति है। लेकिन करण करावनहार है परमात्मा। इसलिए कहा कि मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता हूं, न कर्मों को रचता हूं और न कर्म फल के संयोग को रचता हूं। स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही मनुष्य बरतता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति के अनुसार ही वो बरतता है। आगे भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख ये आदि अंत दुख का कारण है। गहरी बात है ये समझने की क्योंकि आज मनुष्य इंद्रियों के सुख को ही सच्चा सुख समझने लगा है, लेकिन भगवान कहते हैं ये आदि अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है, इसीलिए संसार में रहते मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता के द्वारा असीम सुख का अनुभव करता है। सच्चा योगी वही माना गया जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त की है, जो इन विकारों के वेग को सहन कर सकते हैं और उसके बावजूद भी अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में एकाग्र कर सकते हैं, उसकी शरण में जा सकते हैं। वह मोह संसार में रहते हुए भी मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त अवस्था में है। इस संसार में कहा जाता है कि जीवन मुक्त एक ही व्यक्ति था और वो था जनक राजा। जनक राजा की कहानी आप सभी जानते हो। एक बार जनक राजा ने ऐलान किया कि कोई मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान एक सेकंड में दे। काफी विद्वान आए, ज्ञान सुनाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने कहा मुझे एक सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान दे। धीरे धीरे सारे असमर्थ हो गए उनको एक सेकंड में बताने के लिए। तब कहा जाता है कि अष्टावक्र जी आते हैं और अष्टावक्र जी ने कहा मैं आपको ज्ञान दूंगा लेकिन समय पर दूंगा। सभा विसर्जित हो गई। राजा ने सोचा भी क्या करूं, तो थोड़ा घोड़े पर सैर करके आता हूं। उसने अपना घोड़ा मंगाया और जैसे ही घोड़े पर चढ़ने गया, एक पैर जमीन पर एक पैर घोड़े पर था कि दूर से अष्टावक्र ने आवाज लगाई, ठहरो राजन, इस वक्त कहां हो। राजा सोच में पड़ गया, जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूं, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हूं। तो उसने कहा यही तो जीवन मुक्ति का ज्ञान है, एक सेकंड में चाहिए था आपको। कहा कैसे, तो कहा जिस तरह जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं है, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हो, ठीक इसी तरह संसार में रहते हुए संसार की बुराई आप में न रहे, यह है जीवन मुक्त स्थिति। तभी गीता में कहा मुक्ति से श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है, मुक्त हो जाना यह अलग चीज है। शरीर के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा परमधाम में चली जाती है, वहां कोई अनुभव नहीं है, बस शांति है, दैट्स ऑल। जिस तरह एक व्यक्ति सोया होता है और गहरी नींद हो, मान लो कोई व्यक्ति की बहुत लाइट निद्रा हो, थोड़ा सा आवाज होता है उठ जाता हो, लेकिन एक दिन इतना थका हुआ था कि गहरी नींद में चला गया और उसी समय बैंड बाजा बजाते हुए एक शादी का वो जा रहा था, इतना आवाज था, परिवार वाले सोचने लगे कहीं ये नींद खुल जाएगी तो और ही गुस्सा करेंगे, लेकिन इतनी गहरी नींद में था उसको पता ही नहीं चला। उठने के बाद जब उसको बताया जाता है कि आज आपके नींद खुली नहीं, इतना आवाज था बैंड बाजा का, फटाके का, फिर भी आपके जागृत नहीं हुए आप। कहा अच्छा, इतना गहरी नींद में था। जब वो सोया हुआ तब उसको पता नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। उठने के बाद अनुभव होता है कि सचमुच क्या इतनी गहरी नींद में मैं सोया हुआ था। मैं सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद भी यहां से कुछ चीजें छूटती नहीं है, और मैं इन सबके बीच में रहते हुए कैसे छोड़ पाऊं, कैसे छोड़ पा रहा हूं, कैसे जीवन मुक्त अवस्था में हूं। कहा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा थोड़ा कारोबार है, मैं उस कारोबार पूरा करके फिर आपके साथ ज्ञान चर्चा करता हूं, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? तो राजा जनक ने कहे काम करो, तब तक आप मेरे महल का अवलोकन करके आइए। मेरे महल के एक साइड में बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है, उसको देख करके आइए। कहा ठीक है। राजा जनक ने कहा उसको कि ये कारीगरी देखने के लिए अभी काम चालू है, तो बत्तियां नहीं लगी है, थोड़ा अंधेरा होने लगा है, आप स्पष्ट देख नहीं पाएंगे, तो ये दीपक ले जाओ, दीपक के सहारे में आपको वो दिखाई देंगे, उसकी चमक दिखाई देंगी, बहुत अच्छा रहेगा। उसने कहा ठीक है। जैसे जाने लगा तो कहा ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं हैं और वही हवा की दिशा है, दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। का कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। और वो लेकर चला, जब तक सारी महल की कारीगरी आदि सब देख करके आया, तब तक राजा जनक भी फ्री होकर के अपने कारोबार से फिर उस महात्मा के साथ बैठे और पूछा, अच्छा आप महल देख के आए? कहां देख के आया, कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर था, कारीगरी तो बहुत सुंदर थी। तब राजा जनक ने पूछा ध्यान कहां था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था, दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। तो कहा यही तो रहस्य है मेरा जीवन मुक्त होने का, कि इन सब के बीच में मैं रहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान उसमें नहीं, मेरा ध्यान आत्मरूपी दीपक पर है, कि ये दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। यही जीवन मुक्त अवस्था का रहस्य है, कि जीवन जीना है, अनुभव करते हुए उससे न्यारा कैसे रहना है, ये भगवान उसको बताता है, कि परमात्मा पर ध्यान कैसे लगा रहे, उसके लिए आत्मरूपी दीपक पर जितना ध्यान रहेगा तो परमात्मा पर भी ध्यान एकाग्र करना सहज हो जाएगा, और तब ये जीवन मुक्त अवस्था में रह सकेंगे और मन की एकाग्रता द्वारा असीम सुख का अनुभव होगा। आगे फिर भगवान अर्जुन को ध्यान योग की विधि बताते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो कैसे अपने ध्यान को उस आत्मरूपी दीपक पर एकाग्र करना है। उस लिंक में भगवान आगे उसको बताते कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों, विषय किसको कहा यहां पर, हम प्रार्थना में हमेशा ये गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय किसको कहा? जो विकृत विषय है, जो विकार है, उससे कनेक्टेड जो विषय है, उसको विषय कहा। तो कहा कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों, विकारों, दृश्य का चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। ध्यान की विधि बताते हैं, इतनी सुंदर विधि बताई है। अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। जीवन मुक्त स्थिति किसको कहते हैं? कि जब बाहर के दृश्य को देखते हुए, विकृत विषय को सुनते हुए, हम अपनी इंद्रियों को उसके चिंतन में न लगा करके अपने अंतर चक्षु को सेफ कर दे और भ्रुकुटी की मध्य में, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान ये सरफेस मार्किंग है। भारत के अंदर एक प्रथा है, जब मंदिर में जाते हैं ना तो चमड़े की चीज को बाहर उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं तिलक लगाते हैं, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ के नमन करते हैं। ये प्रथा है, सारे भारत भर में ये प्रथा चलती। जब भी मंदिर जाएंगे चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, अंदर जाएंगे तिलक लगाएंगे, फिर भगवान। ऐसे क्यों करते हैं? कभी सोचा ये क्यों करते हैं? चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा, जिस चमड़े का व्यक्ति अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो ये अहंकार के चमड़े को बाहर उतारो, देह अभिमान को बाहर उतारो, फिर अंदर जाकर तिलक लगाना। मतलब स्वयं को आत्मभाव में स्थित करो कि मैं ये देह, मैं फलाना फलाना नहीं हूं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। कितना ऊंचा भाव है। और उसके बाद फिर मूर्ति के सामने जाकर के हे प्रभु, मैं आत्मा, आपकी संतान, आपको नमन कर रही हूं। लेकिन कभी इस भाव से कोई मंदिर में नहीं जाता है। एक रीत के हिसाब से, जैसे वो कहावत है, सांप गया और निशान छूट गया, ठीक इसी तरह हम भी रोज वही प्रक्रिया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए करना होता है, उस भाव से हम करें, किसी ने आज तक हमें समझाया नहीं कि ये तिलक यहां ही क्यों लगाया जाता, यहां 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 और कहीं नहीं लगाया, यहीं क्यों लगाया? क्योंकि अंतर चक्षु जो स्पष्ट किया है, आत्मा के अंतर चक्षु, वो यहां दिखाया। मेडिकल साइंस वालों ने तो आज कहा कि आत्मा का निवास स्थान, उस चैतन्य शक्ति का निवास स्थान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, जो यहां से ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे, वो एग्जैक्ट लोकेशन है आत्मा का। लेकिन सरफेस मार्किंग ये है, इसीलिए यहां तिलक लगाया जाता है, वो आत्म भाव में स्थित होने के लिए। और उसमें भी विशेष करके मंदिर में चंदन का तिलक लगाया जाता है। क्यों चंदन का ही तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक तो चंदन का तिलक जब लगाएंगे छोटा सा, दूसरा चंदन का कलर गोल्डन है, ये स्मृति दिलाता है कि आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र है। जब इंसान का जन्म होता है तो वो बच्चा कितना निर्मल और पवित्र है। हर आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध पवित्र है, निर्मल है। तीसरा, चंदन लगाने से ठंडक महसूस होती है, हमें अपनी स्वधर्म की याद दिलाती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा गुण धर्म शांति है। और चौथा चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है कि आत्मा जब अपने सतो गुण में है, अपनी वास्तविकता में स्थित है, तो अपने गुणों की खुशबू चारों ओर फैला रही है। ये आत्मा के गुणों की खुशबू को हमें अपने व्यवहार में, अपने कर्म में, अपने संबंध में प्रवाहित होने देना है। कितना ऊंचा भाव है, लेकिन कभी उस स्मृति से हमने तिलक नहीं लगाया, एक रसम की रीति से लगा दिया। और अगर कोई बच्चा पूछता भी है कि ये रोज यहां तिलक, इसके बदले यहां लगाओ, यहां लगाओ, क्या कहेंगे? तू समझता नहीं तो चुप रहे, है ना, यही कहेंगे। लेकिन क्या हम समझ रहे हैं कि हम क्यों तिलक लगा रहे हैं और चंदन का ही तिलक क्यों लगाया जाता है? तब भगवान ने कहा कि मन को शांत कर, उस स्वधर्म में स्थित हो जा, मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो। जब मन शांत होता है तब बुद्धि उस ईश्वर में लगती है। और भावनाएं कैसी होनी चाहिए उस वक्त जब ध्यान करते हैं? कि सर्व प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना, सभी मनुष्य के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर, संसार सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। ये ध्यान की विधि है कि जब बैठते हैं तो आत्मस्मृति, मन को शांत करना, बुद्धि को एकाग्र करना और भावनाओं में कल्याण की कामना को प्रवाहित करना। कितना सुंदर तरीका भगवान बताते हैं। फिर छठे अध्याय में ध्यान योग को और गहराई से भगवान बताते हैं और बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। भगवान कहते हैं अष्टांग योग और उसके अभ्यास की सही विधि का स्पष्टीकरण करते हैं कि मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ध्यान को परमात्मा में एकाग्र करने में, कौन सी बातें आएगी कठिनाइयों के रूप में। और उसमें प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, पांचवें श्लोक से लेकर दसवें श्लोक तक आत्म उन्नति तथा मन को मित्र बनाने की प्रेरणा, ग्यारहवें श्लोक से लेकर उन्नीसवें श्लोक तक ध्यान में बैठने की विधि, बीसवें श्लोक से लेकर बत्तीसवें श्लोक तक योगयुक्त पुरुष के अनुभव एवं लक्षण, तैतीसवें श्लोक से लेकर छत्तीसवें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय और 37वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा बताई है। और इस तरह से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करते समय किसी भी प्रकार की फल की कामना न रखते हुए जो कर्म करता है तथा इंद्रिय जन्य सुख के संपूर्ण भौतिक पदार्थों की इच्छा युक्त संकल्पों का त्याग करने वाला ही सच्चा योगी व सन्यासी है। जिसका मन वश में हो, ये भूमिका भगवान बताते हैं ध्यान में बैठने की, कि मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो जिसका मन वश में है और शांत चित होकर स्वयं को किसी उपयोगी कार्य में लगाता है, वही योगारूढ़ की अवस्था वाला है, वही योगी माना गया है। उसके बाद भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। पहले तो भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को अपनी आत्म उन्नति करनी चाहिए, आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि जीवात्मा स्वयं का मित्र और शत्रु होता है। अब जब ये वाक्य कहा तो नेचुरल है कि हमारे मन में भी ये सवाल उत्पन्न होता है कि मित्र कब बनता है और शत्रु कब होता है। तो अर्जुन भी सवाल पूछता है कि हे प्रभु, ये मित्र कब होता है और कब शत्रु बनता है? सिंपल शब्द में भगवान सटीक जवाब देते हैं और कहते हैं, जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तो वह मित्र है, और जब मन सहित इंद्रियां परवश है, कोई ना कोई विकारों के परवश है, बुराइयों के परवश है, तब वो शत्रु है। और फिर आगे कहते, जिसने मन को जीत लिया, ऐसे पुरुष की अवस्था कैसी होगी? सचमुच अगर इसने इंद्रियों को जीता है तो बैलेंस जीवन के अंदर बहुत आवश्यक। तो जिसने मन को जीत लिया, ऐसा पुरुष मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी से निर्लिप्त रहता है, ये उसकी पहचान है। तथा मन को शांत रख परमात्मा की स्मृति में समा जाता है, खो जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति, एक कुमार है या कुमारी है, जब तक उनको मालूम नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है, कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उसको कहना नहीं पड़ता है कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्रेम से याद करो, या वो ये नहीं कहता है कि मुझे कोई सिखाए उसको याद कैसे करूं, मैं तो उसको जानती नहीं, मैंने खाली फोटो देखा था, मैं तो जानती नहीं हूं, मैं कैसे उसको याद करूं। नहीं, जैसे ही वो रिश्ता हुआ कि एकांत के पलों में बैठे होंगे, खो जाएगा। पास में से कोई गुजर जाए और पूछा जाए, यहां से कोई गया, तो क्या कहेंगे? पता नहीं, अरे आंखें खुली है, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, पता नहीं चला, तो क्या कहते हैं? ध्यान नहीं था। तो ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान करने के लिए आंखें खुली चाहिए या बंद चाहिए? और ध्यान का सही मतलब क्या है? कि जब किसी की याद में खो जाए, उसको कहते ध्यान। आंखें खुली है, पास में से कोई चला गया, ध्यान नहीं गया। अगर इंसान की याद में ध्यान एकाग्र हो सकता है, तो क्या परमात्मा की याद में ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता है? लेकिन अगर हमारी इंद्रियां परवश है तो नहीं होगा, क्योंकि आत्मा स्वयं का ही मित्र, स्वयं का ही शत्रु है। इसलिए कहा जाता है, पहले मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, पहले अपने मन को अपना मित्र बनाओ। जब मन को अपना मित्र बनाएंगे, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करेंगे, तो वो बहुत सहज, बहुत अच्छा अनुभव कराएगा, तब वो समा जाएगा ईश्वर की याद में सहज ही। उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो योगी, जैसे कहा ये सारी भूमिका बना रहे हैं ध्यान के लिए, कि जो योगी अपने आध्यात्मिक ज्ञान एवं आत्म अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसे जितेंद्रिय की दृष्टि में मिट्टी पत्थर कंचन एक समान है। ज्ञान को जिसने हजम किया हुआ है, ज्ञान की पराकाष्ठा, जो परिपक्व, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बहुत सुंदर ये शब्द है इंग्लिश में, कि जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन के अंदर हजम किया है, उसके अंदर जो परिपक्वता आती है, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। और आज के संसार में यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी व्यक्ति के जीवन में नहीं है। तो ऐसे जितेंद्रिय की दृष्टि समान होती है, मिट्टी पत्थर कंचन जो भी हो एक समान है, तथा वह भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति भी समान भाव से व्यवहार करता है, उसकी कंप्लेंट्स नहीं होती है, ये व्यक्ति ऐसा है इसीलिए मैंने ऐसा किया, ये व्यक्ति ऐसा इसलिए मैंने ऐसा किया, नो कंप्लेंट्स। कैसे भी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति हो, उसके प्रति भी समान भाव से व्यवहार करता है। संयम युक्त अपरिग्राही योगी सदा एकांत में रहे, अपने मन को वश में करके निरंतर परमात्मा की याद में बुद्धि को एकाग्र करता है। और फिर बैठने की विधि भगवान बताते हैं कि मेडिटेशन में बैठना कैसे है। बहुत सुंदर जो भगवान कहते हैं, समझने जैसा है, क्योंकि आज तक हम सही तरीके से मेडिटेशन में बैठते ही नहीं हैं। लेकिन भगवान ने जो मेडिटेशन की विधि बताई है कि शांत अंतकरण हो, जब मेडिटेशन करना है तो उस वक्त अंदर उत्पात मचा रहा हो, मन परेशान हो, तो मेडिटेशन नहीं हो सकता है। लेकिन मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो ध्यान के समय शांत अंतकरण हो। जैसे व्यक्ति व्यक्ति की याद में जब खो जाता है, ध्यान उसमें लग जाता है, कोई आकर के कुछ पूछता है, सुनाई नहीं देता है, फिर ऐसे करते तब ध्यान टूटता है, कहां हो उस वक्त। उसकी मन की स्थिति बहुत शांत होती है। ठीक इसी तरह जब ईश्वर की याद में बैठना है तो मन अंतकरण बहुत शांत होना चाहिए। दूसरा, भय रहित। इसलिए कहा कल भी मैंने कि भगवान को याद करो तो भय से नहीं करो, प्रेम से याद करो। डर से क्यों याद करना, डर से याद नहीं करो। तो शांत अंतकरण, भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को जब योग लगाना है तो पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर, दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर, है ना। इसलिए कहा पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रिय तथा कर्मों को संयम में रखकर, मन इंद्रिय और कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर। बहुत सुंदर यहां बैठने की विधि बताई है और भगवान कहते हैं, स्लाइड डालो, कि पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रिय और कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि, इसलिए कहा दृष्टि को बंद करना नहीं है मेडिटेशन में बैठते समय। ये हमारी एक भावना हो गई है कि मेडिटेशन में बैठना माना आंखें बंद करना, नहीं, आंखें बंद नहीं करना, निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय के अंदर शुद्ध भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। ये भूमिका बताइए, दृष्टि को खुला रखना है। जो ये समझते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं तब हमारा ध्यान अच्छा लगता है, एक भ्रम है, क्योंकि आंखें बंद करने से मन सारी दुनिया चक्कर लगा के आ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब खुली आंख रखते हैं और मन गया तो हमारा अटेंशन जाता है कि मन गया, और इसीलिए उसको वापस खींच सकते हैं। लेकिन आंखें बंद हैं, मन शांत है, तो स्वाभाविक हो सकता है कि मनुष्य निद्रा की अवस्था में चला जाएगा। और फिर अगर उसको पूछो कि योग कैसा रहा, कहेंगे बड़ी शांति थी। लेकिन वो शांति योग की नहीं थी, निद्रा की थी। हमें निद्रा योग नहीं करना है, राजयोग करना है। और राजयोग के लिए अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो। और इसीलिए दृष्टि को बंद करने से व्यक्ति सारा दिन का थका हुआ होगा और दृष्टि बंद करके बैठेगा और शांति का वातावरण है, एकांत का स्थान है, तो क्या होगा? नींद आ जाना स्वाभाविक है। तो आंखें खुली रहती है तो कम से कम नींद तो नहीं आएगी, जागृत अवस्था तो है। तो इसीलिए भगवान कहते मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय के अंदर, उस समय किसी के प्रति कोई भी प्रकार की इल फीलिंग्स ना हो कि भगवान को याद करने बैठे और उस समय वो व्यक्ति की याद आती रहे, व्यक्ति बड़ा खराब है, अच्छा नहीं है, उसकी भावना ही ठीक नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, क्या योग करेंगे, किसके साथ योग लग रहा है? इसीलिए जब भगवान को याद करने बैठो, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसकी याद आ गई तो उसको भी शुभ भावना का ही दान दो, शुभ भावना रखो, तो आपका योग सही लगेगा। और कहा पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर, कौन सा आसन लगाना है, कौन सा आसन लगाएंगे? पतंजलि ने भी यही कहा है, सुखासन, जिसमें आपकी इंद्रियों का ध्यान कम से कम जाए वो आसन लगाओ। और इसीलिए सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन अति उत्तम आसन माने गए हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में हर एक को घुटने की प्रॉब्लम है, और इसीलिए अगर मैं कहूं कि भाई आप आसन लगाकर बैठो, आपका ध्यान ऊपर जाने के बजाय घुटनों में जाएगा, ये घुटना दर्द कर रहा है, कब मेडिटेशन पूरा होगा, कब ये खलास होगा, कहेंगे बड़ा डिफिकल्ट है, जैसे तैसे आधा घंटा बैठे हम, है ना, दोबारा आएंगे नहीं, दूसरे दिन से आएंगे नहीं। बातें तो अच्छी थी लेकिन ध्यान घुटनों में जा रहा था। इसीलिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, उस समय में ये आसन अति उत्तम थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर से ऊर्जा निकलने के तीन द्वार हैं। सबसे पहला द्वार पैर है, यहां से बहुत ऊर्जा निकलती है, इसीलिए ये पैरों को मोड़ना जरूरी है, जरूरी था। आज तो मैं नहीं कहूंगी कि आप सभी मोड़ो, क्योंकि एक तो कुर्सी पर बैठे मोड़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब अगर आपको सुविधा है और आप सहजता से मोड़ सकते हो तो घर में जब जाओ ध्यान करो तो उस समय पैरों को मोड़ करके बैठना, सुबह सुबह के समय में। और जब उसको मोड़ करके बैठेंगे तो यहां से वो ऊर्जा निकलनी बंद हो जाएगी। इसीलिए लोग भारत के अंदर पैर छूते हैं, गुरुओं के सामने जाएंगे, बड़ों के पैर छू कि वहां से जो ऊर्जा निकल रही है हमारे तरफ आए, आती नहीं है, एक भावना है, एक भावना है, इसलिए पैर छूते हैं, है ना, गुरुओं के पैर छूते हैं। या कई बार कई लोग गुरुओं के पैरों को थाली में रखकर धो करके उस पानी को चरणामृत के रूप में बांटते हैं कि एनर्जाइज्ड वाटर, उसको कहते एनर्जाइज्ड वाटर, कि उसने जो तपस्या की हुई है वो ऊर्जा जो है वो पानी में हमने ले लिया और वो पीने से आपके अंदर भी चार्जिंग हो जाएगा। ऐसे कोई चार्जिंग होता नहीं है और आज की दुनिया में तो इस बात को कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ पैरों से ऊर्जा निकलती है। लेकिन जब उसको मोड़ देते हैं तो जैसे एक होस पाइप होता है, आप पानी डालो और अचानक कोई मिलने आ जाए और नलका दूर है, कौन बंद करने जाएगा, तो पाइप को मोड़ देते हैं और पाइप को मोड़ते ही पानी रुक जाता है। ठीक इसी तरह ये पैरों को मोड़ देने से वहां से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाती है। इसीलिए मोड़ना जरूरी बताया गया गीता के अंदर कि आसन लगाकर बैठने की आवश्यकता, ताकि वो ऊर्जा जो निकलने का जो स्थान है उसको हमने बंद कर दिया। दूसरा स्थान है ये हाथ, यहां से भी ऊर्जा बहुत निकलती है। इसीलिए भारत में सिस्टम है हाथ जोड़ने की। जोड़ना क्यों है? ताकि वो ऊर्जा कंटिन्यू फ्लो में रहे, अंदर ही अंदर वो कंटिन्यू फ्लो में रहे। इसीलिए लोग जब आते हैं तो आशीर्वाद चाहते हैं, गुरु के पास जाते तो क्या सोचते, हमें आशीर्वाद मिले, हाथ हमारे सिर पे रखे, ताकि वहां से जो ऊर्जा निकल रही है वो हमें मिले। यहां आत्मा होने कारण आत्मा की डायरेक्ट चार्जिंग हो जाए, ऐसे चार्जिंग होती नहीं है। इसीलिए आशीर्वाद दे देने से, कोई हाथ रख देने से व्यक्ति की बैटरी चार्ज हो जाएगी, ये गलत है। खुद ही खुद को चार्ज करना पड़ता है। और इसीलिए हाथ पैरों को मोड़ो, हाथ को जोड़ो, ये प्रथा है। और ये प्रथा इसीलिए हर धर्म में है। हिंदू धर्म में हम सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन के रूप में बैठते हैं। इस्लाम धर्म में भी पैरों को मोड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वज्रासन में बैठते हैं, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। क्रिश्चियन धर्म में नील डाउन करते हैं, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। हर धर्म में आप देखेंगे पैरों को मोड़ने का सिस्टम है, ताकि वहां से ऊर्जा रुक जाए। दूसरा, हाथ जोड़ना, हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में हाथ जोड़ने की प्रथा है, प्रेयर करते समय, प्रार्थना करते समय, ताकि वो ऊर्जा भी बाहर न निकल जाए, वो अंदर सर्क्यूलेट होती रहे। और इस्लाम धर्म में दोनों हाथ ऊपर करते, ताकि ईश्वर की ऊर्जा को बहुत सहजता से अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये रिसीव करने का भी स्थान है तो देने का भी स्थान है। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर जब कोई रेकी करता है तो हाथ रखते हैं और लोगों को शफा मिलती है, क्योंकि यहां से ऊर्जा निकलती है। कभी आप बहुत तेज गति से आप अपने हाथ को मल के देखो और फिर थोड़ा डिस्टेंस रख करके आप महसूस करो उस ऊर्जा का आदान प्रदान, जिस तरह से होता है आप महसूस कर पाएंगे। तो पैरों को मोड़ो, हाथों को जोड़ो, या राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, इस तरीके से बैठो। कई महान आत्माएं इस तरीके से योग में बैठे, ताकि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। किसी भी तरीके से फ्लो हमारा चलते रहना चाहिए। लेकिन आज के संसार में वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गई, सब कुछ कुर्सी टेबल पर हो गया। पहले के जमाने में कुर्सी टेबल नहीं होते थे, किसी के घरों में सोफा सेट नहीं होते, बैठकें होती थी। किसी के घर में भी जाओ तो नीचे ही बैठाते थे। आजकल सोफा सेट और ये सब वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमारी हो गई, और इसीलिए बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो बेंच और चेयर पर बैठ करके पढ़ते हैं, तो एक तरफ पढ़ते जाते दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाता है। इसीलिए बाद में पूछो क्या याद रहा, कुछ भी याद नहीं रहा, अर्थिंग हो गया सारा। आप अपने बच्चों की मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको इस आसन में बैठ के पढ़ाओ, तो जो पढ़ेगा, जो ग्रहण करेगा, वो अंदर सर्क्यूलेट होगा, बाहर नहीं निकल जाएगा। कुर्सी टेबल पर नहीं पढ़ाओ, जितना आप कुर्सी टेबल पर उसको याद, उसकी मेमोरी पावर इतनी बढ़ेगी नहीं। पहले के समय में जब भोजन करते थे तो भी नीचे बैठ के आसन में भोजन करते थे, आज सब कुर्सी टेबल पर हो गया। इसीलिए बीमारी भी बढ़ गई, हर बात की। कहने का भावार्थ यह है कि गीता के अंदर जो साइंस है उस साइंस को समझने की जरूरत है कि क्यों ये बातें कही भगवान ने कि आसन लगाकर सीधा बैठो, पीठ सीधी उसमें रहती है। तो जो आजकल दुनिया में स्पाइन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है वो नहीं होता है। मेडिटेशन हमारी बॉडी को भी हील करता है इसीलिए। और तीसरा द्वार है ये आंखें। आंखों को बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर तीनों द्वार बंद हो गए, पैरों को मोड़ दिया, हाथों को जोड़ दिया और आंखों को बंद कर दिया, तो ऊर्जा आएगी कहां से? और अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो निकलेगी कहां से? आंखें बहुत जल्दी स्पष्ट करती है कि व्यक्ति के अंदर कौन सी ऊर्जा चल रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी आंखें बताती है। कोई गुस्से वाला व्यक्ति होता है तो कहेंगे इसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी, बहुत गुस्से वाला लग रहा है। कोई शांत प्रकृति का व्यक्ति होगा तो भी उसकी आंखें बताती बड़ा शांत स्वभाव वाला। तो आंखें बहुत पावरफुल द्वार है, जहां से ऊर्जा आती भी है तो जहां से ऊर्जा हम बाहर रिलीज भी करते हैं। और इसीलिए अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो न आएगी, न अंदर की नेगेटिव बाहर निकलेगी। सारे दिन में जो नेगेटिव चिंतन चलता है तो नेगेटिव ऊर्जा अंदर जो क्रिएट हुई उसको निकालना बहुत जरूरी है, तो वो निकलती भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मन बुद्धि को एकाग्र करने के साथ साथ अपनी दृष्टि को भी ईश्वर पर एकाग्र करो, उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करो। मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे शांति दो, शक्ति दो, लेकिन जिस तरह आप बाहर सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सूर्य से मांगते नहीं हो कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, आप खड़े रहो आपको उसकी ऊर्जा मिलने लगेगी, आने लगेगी। ठीक इसी तरह ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप अपने ध्यान को एकाग्र करो। ध्यान माना मन बुद्धि और दृष्टि तीनों को एकाग्र करो, ये है ध्यान। तो जब उसको एकाग्र करते हैं तो परमात्मा की जो पॉजिटिव ऊर्जा है स्वतः हम अंदर लेने लगते हैं, आने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है आत्मा की, और वो ऊर्जा फिर सारे शरीर में प्रवाहित होने लगती है, सर्कुलेट होने लगती है। इसलिए ये आसन जरूरी है, ये साइंस है। और अंदर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर रिलीज हो जाती है, इसीलिए ध्यान के बाद मन बड़ा रिफ्रेश हो जाता है, फ्रेशनेस आती है। माइंड का यहां तक साइंस का रिसर्च है कि ध्यान के बाद मनुष्य का इंट्यूटिटिव पावर बढ़ जाता है, इंट्यूशन जो है सिक्स सेंस बढ़ जाती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति की जो पॉजिटिविटी है ये तो बढ़ती ही है, लेकिन क्रिएटिविटी, रचनात्मकता उसकी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड रिफ्रेश हो जाता है। इसीलिए ये तरीका है, ये साइंस है मेडिटेशन का, द साइंस ऑफ मेडिटेशन। बैठने की विधि कितनी सुंदर स्पष्ट की हुई है, कैसे बैठना चाहिए मेडिटेशन में। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि ये योग उचित आहार विहार बहुत जरूरी है, जैसा अन्न वैसा मन। मन के अंदर अगर बहुत परेशानी है, उत्तेजनाएं हैं, तो इन सब का कारण भोजन है। इसलिए जब ऐसे उत्तेजित करने वाला भोजन स्वीकार करते हैं तो मन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए भोजन जितना सात्विक होता है। आगे भगवान ने बहुत सुंदर तीन प्रकार के भोजन बताए हैं 17वें अध्याय में, लेकिन यहां इतना ही कहा है कि ये योग उचित आहार विहार, उचित आहार, तामसिक माना दुर्गंध वाला भोजन, बासी भोजन, दुर्गंध वाला भोजन, बांस मार रहा हो ऐसा, ये तामसिक भोजन, या जिसमें तला हुआ मिर्च मसाला बहुत ज्यादा, ये तामसिक भोजन है। लेकिन योगियों के लिए सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन उसके मन को भी शांत रखता है, सात्विक रखता है। तो ये योग को जिसको साधना है, ये योग जिसको साधना है उसके लिए है, उसके लिए भगवान कहते उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, अच्छे कर्म हो, क्योंकि दिन भर के जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो मन की स्थिति हमारी बनने लगती है। दिन भर आप चिड़चिड़ापन गुस्सा करते रहे और फिर मेडिटेशन करने बैठो, ध्यान नहीं लगता है। इसीलिए कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, कर्मों में अगर छोटी छोटी बातों में बिना कारण के झूठ बोलते रहे, बिना कारण के हम झगड़ा करते रहे, चिड़चिड़ करते रहे सारा दिन, उसके लिए योग बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर लगेगा। सहज करना है तो उचित आहार विहार, कर्मों को सुधारना जरूरी है, चरित्र को श्रेष्ठ बनाना आवश्यक है, हमारा इंटरैक्शन सभी के साथ जो है बहुत सुंदर जितना होता है, सकारात्मक जितना होता है, उतना मेडिटेशन सहज हो जाएगा, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। और फिर भगवान कहते संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है, संतुलित शयन जागरण। लेकिन आजकल लोगों की दिनचर्या कैसी है, रात को 12 बजे के बाद तो कहीं खाना होता है, 2 बजे तक तो सोना होता है, कहां संतुलन रहा। संतुलित शयन जागरण, सोना और जागना संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, तब योग को साध सकते हैं, पूर्ण अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। क्यों ये भगवान ने बात कही गीता के अंदर, इसके पीछे का साइंस क्या है। पहले के जमाने में बच्चे अगर रात को पढ़ते थे तो माँ बाप स्वाभाविक रीति से कहते थे कि बेटा रात को सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना तो याद रहेगा, कहते थे ना। क्यों ये बात कहते थे, कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, जल्दी सोना जल्दी उठने वाले का सिक्स सेंस इतना पावरफुल होता है, उसकी क्रिएटिविटी इतनी पावरफुल होती है, उसके अंदर जो आध्यात्मिक प्रज्ञा खिलती है, बहुत सुंदर उसका जीवन होने लगता है। उसके पीछे का साइंस क्या है, आप सभी ने जीवन में अनुभव किया है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अगर कोई बच्चा फूल तोड़ने जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा रात को फूल नहीं तोड़ा जाता है। अगर बच्चे ने पूछा क्यों तो क्या कहते हैं, पेड़ पौधे सो गए, पेड़ पौधे सो गए इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यही कहते हैं ना आप अपने बच्चों को कि रात को भले फूल तोड़ो कोई हर्जा नहीं, नहीं पेड़ पौधे सो गए। सो गए का मतलब क्या कि रात के समय में पेड़ पौधों ने अपनी साइकिल चेंज कर दिया। जो दिन भर में ऑक्सीजन रिलीज करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, जैसे ही सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हुआ कि पेड़ पौधों ने अपनी साइकिल चेंज कर दी, वो ऑक्सीजन लेने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगे। देखो कुदरत के अंदर कितनी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने लगता है वातावरण के अंदर, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि आपको उबासी आना शुरू होती है। उबासी आती है ना? ये उबासी क्यों आती है? अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रहा है, इसलिए उबासी आती है। और उबासी आना माना सिग्नल कि अब सोने की तैयारी करो, क्योंकि हमारा शरीर भी उसी पांच तत्वों की प्रकृति से बना है। अगर पेड़ पौधे सो गए तो ये प्रकृति भी सोना चाहती है, लेकिन जैसे ही उबासी आई, सुस्ती आई कि लोग क्या कहते, अरे इतना जल्दी कहां नींद आएगी, चलो एक कप चाय पी लो, एक कप कॉफी पी लो। अब एक कप चाय और एक कप कॉफी क्या होता है? तो जैसे एक घोड़े को दौड़ाते रहो, जैसे ही वो चलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसको चलना शुरू करता है कि फिर उसको तीन चाबुक लगाई, फिर दौड़ाया, फिर जैसे थोड़ा ढीला हुआ, चलना चालू किया, फिर तीन चाबुक लगाए, फिर दौड़ना चालू किया। ये एक कप चाय माना मन रूपी घोड़े को तीन चाबुक लगाना, दौड़, तू सुस्त कैसे हो रहा है, दौड़। और एक कप कॉफी माना छह चाबुक लगाना, और तेज दौड़, और तेज दौड़। अब आप घोड़े को चलने ही नहीं देंगे, आराम ही नहीं देंगे, विश्राम ही नहीं देंगे, दौड़ाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे, तो क्या करेगा फिर? या तो कोलैप्स हो जाएगा घोड़ा है तो, या तो कोई चीज के स्प्रिंग, अगर आर्टिफिशियल घोड़ा है तो उसकी स्प्रिंग छटक जाती है और फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, फिर कंटिन्यू दौड़ता है। आज वही हाल हो गया कि फिर रात को सोना चाहते हुए भी नींद नहीं आती है, क्योंकि अब ये घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतना उसको दौड़ाते रहे तो कहता अभी ठीक है, मैं ही दौड़ता ही रहता हूं, मैं क्यों बंद हूं। अब आप उसको नींद की गोलियां दे करके सुलाना चाहते, रेस्ट देना चाहता है, लेकिन फिर भी मन रूपी घोड़ा दौड़ता ही रहता है। इसलिए नींद की गोली लेने के बाद वो फ्रेशनेस नहीं होती है, क्योंकि मन ने तो आराम किया ही नहीं है। दिनचर्या हमने टोटल अपनी एक्सप्लॉइट कर दी है, इसलिए जब सोना चाहते थे तब उसको सोने नहीं दिया, जगा के रखा, चाहे और तरीके से भी, आज तो चाय कॉफी भी नहीं, दूसरे तरीके से जगा के रखते। और जब दूसरे तरीके से जगा के रखते हैं तो दिनचर्या ही पूरी उल्टी हो गई। इसी तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, अमृत वेला जिसको कहते हैं, उस समय ये पेड़ पौधे फिर से जागते हैं, यानी फिर से अपनी साइकिल चेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेन का खुराक है ऑक्सीजन। इसीलिए रात के समय, ताकि हम सो जाए, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन देगा तो अलर्ट रहेगा, इसलिए वो ऑक्सीजन खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन सुबह के समय में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, हेल्दी भी बनाएगा, वेल्दी भी बनाएगा, वाइज भी बनाएगा। तो उस समय वो फ्रेश ऑक्सीजन जो रिलीज करता है, वो फ्रेश ऑक्सीजन अमृत के बराबर होता है, इसलिए उसको अमृत वेला कहा। इट इज लाइक नेक्टर। और उस समय व्यक्ति उठ करके थोड़ा सा प्राणायाम करके वो फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर ब्रीद करता है, और मेडिटेशन में बैठता है तो उसका जो ये माइंड का या आज्ञा चक्र को हो या जो ब्रह्म कमल है वो भी खिलने लगता है। और जब ब्रह्म कमल उसका खिलता है तो उसकी विजडम बहुत अधिक हो जाती है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, मैंने प्रयोग किया है और अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। इसी बेसिस पर मैं आपको कह रही हूं कि सुबह सुबह के समय में जब उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके फिर मेडिटेशन करो, तो वो जो अमृत जैसा ऑक्सीजन है वो ब्रेन को इतना सुंदर बना देता है। उस मन के अंदर कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, लेकिन सकारात्मक विचार बहुत स्वाभाविक नेचुरल हो जाएंगे। हाँ, इस दुनिया में जीते हैं तो पहचान होती है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव, ये पहचान जरूर है, समझ शक्ति है, विवेक है। ये नहीं कि बुद्धू हो जाता है व्यक्ति, कि कोई अगर नेगेटिव अगर करे तो हमें पता ही नहीं चले, ये नहीं होता है। लेकिन उसकी अपनी मनस्थिति बहुत सुंदर सकारात्मक हो जाती है, वो अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है। जितना ऊंचाई को प्राप्त करना चाहे, जिस भी क्षेत्र में प्राप्त करना चाहे, उस क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। जितने भी महान आत्माएं संसार के अंदर हो गए, उन सब की बायोग्राफी को अगर पढ़ो आप, जीवन कथा को पढ़ो आप, उन्होंने उस चीज को हासिल तभी किया जब उन्होंने अपना शयन जागरण बहुत सुंदर बनाया। तब वो जो हासिल करना चाहते थे, जिस शिखर पर पहुंचना चाहते थे, उस शिखर पर पहुंच गए। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या कोई भी हो, आइंस्टाइन हो या कोई भी हो, आप किसी की भी बायोग्राफी को पढ़ो, है ना, वहां तक कि जो पॉलिटिशियन है, उन पॉलिटिशियंस भी जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उनको पॉलिटिक्स में कभी कोई हरा नहीं सकता है। इतनी उनके अंदर शक्ति आ जाती है कि दुनिया को भी उनका लोहा मानना पड़ता है, ऐसी उनकी सिद्धि। इसलिए कहा, जिस क्षेत्र के अंदर वो प्रोग्रेस करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन सुबह अमृत वेले का अमृत पान करना जरूरी है। तो शयन जागरण संतुलित होना चाहिए, माना लेटेस्ट 10 बजे तक व्यक्ति सो जाए, 10-10:30 तक, और सुबह 4 बजे उठ करके उस फ्रेश ऑक्सीजन का अमृत पान करे, फिर देखो सारा दिन उसका कैसे बीतता है। ये भगवान ने साइंस बताया है कि सुबह उठना क्यों जरूरी है। और जब से लेकर के आज लोग एसी में ही सोते हैं, कोई भी सीजन हो, पहले तो गर्मी के दिनों में एसी चलाते थे, अब तो ठंडी के दिनों में भी एसी चलता है, खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, तो फ्रेश ऑक्सीजन और उठने का समय 10 बजे तक है, 8 बजे 10 बजे तक समय है, अब उनका क्या बुद्धि का विकास होगा? आज डिप्रेशन के शिकार क्यों लोग बनते जा रहे हैं? इतना डिप्रेशन लोगों के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने कभी वो अमृत वेले का अमृत पान ही नहीं किया, फ्रेश ऑक्सीजन उनको मिला ही नहीं, तो बुद्धि का विकास नहीं हुआ जिस तरह से वो बुद्धि खिलनी चाहिए, आज्ञा चक्र खुलना चाहिए या ब्रह्म कमल खिलना चाहिए, वो खिलने ही नहीं दिया हमने। इसीलिए लोगों को डिप्रेशन, नकारात्मकता, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि आज परिवार वाले भी परेशान है। परिवार वाले तो छोड़ो, मनुष्य खुद भी खुद से परेशान हो गया है कि मैं अपने विचारों को पॉजिटिव क्यों नहीं कर पा रहा हूं, अमृत पान ही नहीं किया है, तो टोटल लाइफ इंबैलेंस हो गई है। तो योग साधना तो बहुत दूर की बात, पहले अपनी लाइफ को तो बैलेंस करें। ये गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है और फिर उसका अनुभव क्या होता है। तो अनुभव सुनाते हैं भगवान कि जैसे वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति चलायमान नहीं होती है, लौ सीधी ऊपर जाती है, वैसे योग अभ्यास द्वारा जब चित्त वश में हो और योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो तब वो योग युक्त कहलाता है, उसके अंदर वो विजडम जागृत होती, योग युक्त उसका जीवन ऐसा बन जाता है। और अनुभव सुनाते हैं भगवान कि इस योग अभ्यास द्वारा क्या प्राप्ति है, क्या बेनिफिट्स है। तो वो बेनिफिट्स भगवान बताते हैं कि इस योग अभ्यास द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है। भौतिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर से जब हमारी श्वसन प्रणाली ठीक हो जाती है, मेडिटेशन करने से जब वो शांत हो जाता है, हमारा चित्त वश में है, तो भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है एवं विशुद्ध मन से, मन इतना शुद्ध, विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। कितनी ऊंची प्राप्ति है, दुनिया के अंदर सबसे ऊंची प्राप्ति अगर है तो कहा जाता है आनंद की प्राप्ति। जीवन में आनंद जो आज लुप्त हो गया, आनंद तो छोड़ो खुशी भी गायब, आज मनुष्य खुशी का अनुभव करने के लिए भी कौन से तरीके अपनाता है, खुशी भी नहीं रही है। अरे घर में अगर मुस्कुरा देता है तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछना चालू करते, क्या बात है आज इतना खुश कैसे हैं। और अगर व्यक्ति डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है और उसने कुछ नहीं कहा और कहा बस ऐसे ही, क्यों खुश नहीं हो सकते क्या, तो क्या कहते हैं परिवार वाले, दिमाग ठीक है, आर यू ओके। मतलब व्यक्ति हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन, अगर ये स्माइल कर रहा है तो इज नॉट ओके, ये धारणा बना लेता है ना। लेकिन सर्वोच्च प्राप्ति जीवन के अंदर अगर है तो वो है आनंद की प्राप्ति। इसलिए महान आत्माओं ने अपने जीवन के अंदर उद्देश्य यही रखा कि हमें उस आनंद को प्राप्त करना है, परमानंद को प्राप्त करना है, और वो डेविएट न हो, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया। कई महात्माओं ने अपने नाम के पीछे आनंद क्यों जोड़ा, ताकि अपने जीवन का उद्देश्य उनको याद रहे। जैसे नाम स्मृति से कोई बुलाता है तो याद रहता है कि भाई हम भटक ना जाए, और कैसे प्राप्त करेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू लिया, किसी ने सोचा सत्य की वैल्यू को लेकर चलेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, तो उसने नाम रख दिया सत्यानंद। किसी ने सोचा दया की वैल्यू को लेकर चलेंगे तो आनंद मिलेगा, तो उसने नाम रख दिया दयानंद। किसी ने सोचा मुक्त रहो तो आनंद मिलेगा, तो उसने नाम रख दिया मुक्तानंद, है ना। तो जिसने आना पड़ता है, कितनी बार 10 बार होमवर्क में दिया जाता है लिखो ABCD, स्कूल में कितनी बार उसको पढ़ाया जाता है, तब जाकर ये हाथ को प्रैक्टिस होती है ABCD लिखने की। एक मन को जो इतना चंचल है उसको सिद्ध करना है, सीधा करना है, उसको एकाग्र करना है, तो इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यही भगवान कहते हैं, अभ्यास करना चाहिए लेकिन धैर्यतापूर्ण और दृढ़ निश्चय के साथ, जब इसका अभ्यास करते हैं तब सफल हो जाते हैं। विधि भी बता दी, प्राप्ति भी बता दी, अनुभव भी बता दिया, फिर आगे भगवान कहते हैं मन अपनी चंचलता, मन चंचल है, कितना डाउन टू अर्थ है भगवान, कितनी डाउन टू अर्थ, कई हवा में बात नहीं करता है। और कहते हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण इधर उधर विचरण करता है। जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो इधर उधर जाएगा भी कभी कभी, तो उसे वहां से पुनः वापस ले आए, जाएगा लेकिन पुनः वापस ले आए और अपने वश में करे तथा परमात्मा में पुनः जोड़ो। जाएगा फिर ले आओ, फिर लगाओ, फिर जाएगा फिर ले आओ लगाओ, अभ्यास करना जरूरी है। इस प्रकार निरंतर योग अभ्यास में रहकर आत्म संयमी योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं परमात्मा के सानिध्य में अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद का अनुभव करता है और सर्व के प्रति आत्म भाव को विकसित कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर सकता है। हर आत्मा के प्रति उसकी बहुत सुंदर भावनाएं होने लगती है। लेकिन ऐसे समय में फिर अर्जुन का प्रश्न है जो हमारे मन के अंदर भी है, और वो प्रश्न क्या है? तो अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है और बलवान भी है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं, इट इज इम्पॉसिबल। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, मैं जानता हूं मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वश में भी हो जाता है। मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए योग कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज भी है। मन को जितना आप अभ्यास के द्वारा वश में करने का, समझ से ज्ञान के माध्यम से उसको वश में करने का प्रयत्न करो तो सहज भी है, है ना? एक बार की बात याद आती है कि एक बार एक राजा था, सम्राट था, उसका मन बड़ा चंचल था, बड़ा परेशान रहता था अपने मन से की चंचलता से, रात रात उसको नींद नहीं आती थी। एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा जी पहुंचे और उसके पास ऐसी सिद्धि थी कि कैसे भी परेशान मन वाला व्यक्ति हो उसको वो शांत कर सकता है। जब उसने ये बात सुनी तो उसको लगा मुझे तो जरूर जाना चाहिए इस महात्मा जी से मिलने के लिए, मेरा मन बड़ा परेशान है, रात रात नींद नहीं आती है। वो गया महात्मा जी के पास, महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, रात रात मुझे नींद नहीं आती है, आप कृपा करिए और मेरे मन को शांत कीजिए। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपके मन को शांत करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कल सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। अब सम्राट ने सोचा एक रात फिर मेरी ऐसी जाएंगी, लेकिन महात्मा जी से क्या कहे, तो इसीलिए कहा ठीक है। जैसे सोचा कि भाई ठीक है 4 बजे आएंगे, उठ करके जाने लगे तो महात्मा जी ने कहा ठहरो, एक बात याद रखना कि कल सुबह जब 4 बजे आओ तो अपने मन को साथ लेकर के आना। सम्राट ने हां तो भर ली, लेकिन महल में जाने के बाद बड़ा परेशान होने लगा कि कम से कम मैं महात्मा जी से पूछ तो लेता था कि मन को कैसे साथ ले आना होता है, और अगर मैं मन को साथ लेकर नहीं गया तो इसका मतलब मेरा मन कभी वश में ही नहीं होगा। रात भर उसको नींद नहीं आई, मन को कैसे ले जाऊं, मन को कैसे ले जाना होता है। आखिर सुबह जब 4 बजने को आया तो उसको लगा चला जाता हूं, देखा जाएगा। जैसे ही वहां पहुंचा महात्मा जी के पास तो देखा महात्मा जी आसन लगाकर हाथ में डंडा लिए बैठे थे। सम्राट को देखा तो कहा आइए आसन ग्रहण कीजिए, और सबसे पहला सवाल यही पूछा अपने मन को साथ ले आए। सम्राट ने कहा यही बात तो समझ में नहीं आई कि मन को कैसे ले आना होता है, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि अगर मैं आया हूं तो मन भी आया ही होगा। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, ठीक समझा कि आप आए, मना मन भी आया ही है। उसके बाद कहा, आंखें बंद करो, ढूंढो अपने मन को कि इस वक्त मन कहां है और क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की, ढूंढने लगे अपने मन को। काफी देर ढूंढते रहे, काफी देर के बाद एहसास हुआ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है, और वो क्रिया है सोचने की क्रिया। जब ढूंढने लगे तो सोचने की क्रिया शांत हो गई, तो मन की शांति का अनुभव हुआ। हमारा मन भी इतना परेशान रहता है क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है अपने लिए, अपने मन के लिए हमारे पास समय ही नहीं है कि हम कभी देखें कि मन कहां कहां घूम रहा है, कभी उससे बैठे, उससे बात करें, मन को मित्र बनाएं, ये हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमारा सारा वक्त दूसरों के लिए है, अपने लिए तो है ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं, मन को समझो और धीरे धीरे पुरुषार्थ के माध्यम से उसको वश करके देखो, अभ्यास करो। सहज भी है, ये नहीं कि मुश्किल है। उसके बाद अर्जुन का दूसरा प्रश्न, जो हमारे मन में भी हो सकता है, कि हे भगवान, असफल पुरुषार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है, माना मैं मानती हूं कि योग अच्छी चीज है, श्रद्धा भी है, लेकिन असफल हो जाऊं अभ्यास करते करते, तो असफल पुरुषार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है पर अंत समय मन विचलित हो गया, तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? बहुत सुंदर उत्तर भगवान देते हैं और कहते हैं, पुरुषार्थी कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, गारंटी है भगवान की। जिसने पुरुषार्थ किया वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वो पुनर्जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है, वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त हो जाता है। मानो असफल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा जन्म लेते ही वो पुनः अपने उस संस्कार को जागृत करके उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। कई बार हम देखते हैं, कई छोटे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा ध्यान में बैठते हैं, बहुत अच्छा योग अभ्यास करने लगते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो कहते हैं इसके कोई पूर्व जन्म के संस्कार बहुत ऊंच है जिसको जागृत करके ये आगे बढ़ा है। योगी पुरुष, बहुत सुंदर बात कही, योगी पुरुष तपस्वियों, ज्ञानियों तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, योगी बनो। खाली ज्ञानी नहीं बनना है, खाली तपस्या नहीं करनी है, लेकिन योगी माना एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जहां ज्ञान भी है, तपस्या भी है, श्रेष्ठ कर्म भी है। इसलिए भगवान उसको कहते हैं, अर्जुन तुम योगी बनो और समर्पण भाव के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो, योग का आचरण करो। कितनी सुंदर बात कही। और इस तरह से इस अध्याय के अंत में यही कहा कि कोई भी पुरुषार्थी कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अगर मान लो कि आपके साधना अधूरी रह गई, तो वो साधना आगे की लाइफ में कंप्लीट जरूर हो जाती है। फिर सातवें अध्याय के अंदर तो भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग बताया है, लेकिन मैं यहाँ ही आज समाप्त करूंगी क्योंकि समय भी इशारा कर रहा है। और अभी मैं हमारी परम आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आकर के उनके मन के जो भाव है ये 5 दिन में, जो उनके मन के अंदर जो भाव है, जिस भावना के साथ उन्होंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है आप सबके लिए, और आपको इतना ज्ञान की प्राप्ति हो, योग साधना के मार्ग पर आप आकर्षित हो, और किस तरह से आप अपने जीवन को एक दिशा दे सको, उन्नति की ओर ले जा सको, तो वो भावनाएं अपनी प्रकट करेंगे कि अब इसके बाद भी उनके मन में आपके प्रति क्या भावना है। हमारी आदरणीय दीदी जी, इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में, योग साधना के अभ्यास में करीबन 70 साल का उनका अभ्यास है, तपस्या है। बचपन से ही वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, जब इस संस्थापक थे साकार में, उनके सानिध्य में उनको रहने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे सीखने का, और उनसे जो वरदान प्राप्त किए उन वरदानों के आधार पर उनका जीवन बना। उनके कुंडली में यह था कि उनकी आयुष्य बहुत छोटी है, यह उनको बताया गया था कि बहुत छोटी आयुष्य है, लेकिन योग के माध्यम से आयुष्य को भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है हमारी दीदी जी कि उन्होंने योग मार्ग के साधना से कैसे अपने आयुष्य को भी बढ़ाया है और अपने शरीर को भी किस तरह से वो चला रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। और मैं तो यही कहूंगी, एक माँ की तरह इनका हृदय है, और माँ की तरह जिस तरह एक माँ के अंदर भावनाएं बहुत अच्छी होती है, ऐसे ही आदरणीय दीदी जी के अंदर वो भावनाएं छलकती हुई आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो इसीलिए परम आदरणीय कैलाश दीदी जी, जो यहाँ गांधीनगर की सेवा के लिए जो निमित्त है, जिम्मेवार है, उनके अंदर की सुंदर भावनाओं को आप सभी सुनेंगे भी, और आगे के लिए जो उनकी प्रेरणाएं हैं उन प्रेरणाओं को भी कैच करेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा श्री बाबा, जो हम सब आत्माओं के परम रक्षक है, उसकी प्रेरणा से हमें एक संकल्प आया कि ये जो गीता का इतना अच्छा रहस्य हम सबको उषा दीदी सुनाते हैं, तो क्यों नहीं गांधीनगर भी करें। तो उनकी प्रेरणा से ये प्रोग्राम रचा। तो उस बाबा का मैं बहुत बहुत दिल से, और आप सभी खूब तालियां बजा के बाबा का थैंक्स करें। दूसरा, 16 तारीख से लेकर आज 20 तारीख तक उषा दीदी ने बहुत ही अच्छी तरह से गीता का रहस्य हम सबके आगे रखा, और हमें सच्चे सच्चे सच्ची गीता क्या है, उसका क्या मतलब है। हम लोग कई बार गीता सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन बहन ने बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पॉइंट खोल करके हम सबके आगे रखी। हम सबके जो भी थोड़े प्रश्न वगैरह हुए वो भी सब खत्म हुए और अच्छी तरह समझ पाए कि भगवान के कहने का क्या मतलब है। तो ऐसी उषा दीदी का भी मैं खूब खूब दिल से खूब खूब मन से शुक्रिया मानती हूँ, थैंक्स कहती हूँ। काफी अभ्यास दीदी ने किया है, काफी मेहनत करके इतना हम सबको जो इतना ज्ञान खजाना दे रहे हैं, तो इनका भी तो काफी अभ्यास होगा ना, तब तो हम सबके आगे इतना अच्छी तरह से 2 घंटे तक कंटिन्यू बोलते हैं। तो दीदी का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत थैंक्स, बहुत थैंक्स। और आप सब भी सुबह को भी शाम को भी हर रोज अपना कारोबार अच्छी तरह सेटिंग करके और हर रोज इस स्थान पर पहुंच करके जो हमें ज्ञान खजाना उषा दीदी दे रहे हैं वो लेने के लिए रोज आते हैं। तो आप सबका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ, थैंक्स कहती हूँ। जोर से तालियां लगाइए अपने लिए, ये भी आप सबकी भी तपस्या है ना, ठंडी में बैठ करके इतना समय तक बैठना सुनना ये भी बड़ी तपस्या है। और हम सबके बीच में हमारे पंचम सिंह डाकू जो थे वो भी पधारे हुए हैं, मैं उनको भी निमंत्रण देती हूँ कि स्टेज पर आए। आओ दादाजी, लेकर के आवे कोई, बहुत अच्छा अनुभव है। वैसे तो इनको बहुत अच्छी तरह से सुनने जैसा है, लेकिन आज इतना टाइम नहीं है, फिर भी उनका हम थोड़ा परिचय तो लेंगे। बहुत अच्छा, कैसे मना एक भयानक खून खार डाकू और उससे कैसे राजयोगी तपस्वी बने, ये भी उनकी बहुत अच्छी वंडरफुल कहानी है। अभी दादाजी आपको शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे, बाकी फिर सेवा अर्थ थोड़ा आए हुए हैं और फिर बाद में उनको बुलाएंगे। और आप सब ने जैसे रोज आए ऐसे ही आपको हर रोज आना है। हम लोगों ने आगे भी जो मना कोर्स है वो सुबह को और शाम को रखा है, सुबह को 7 से 8 और शाम को 8 से 9, तो उसका भी लाभ जरूर से लें। बेन ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि हमें टाइम